जमानों की उमंग, बाब नंबर 41। गलील में बोहरान। जब यीशु मसीह ने लोगों को रोक दिया कि उसको बादशाह ना बनाए, तो उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसका यह अमल नुक्ताए तगैयर साबित होगा। यानी वो लोग जो आज उसे ताज पहनाकर अपना बादशाह बनाना चाहते हैं, कल उसके दुश्मन बन जाएंगे। उनकी मोहब्बत नफरत में और उनकी हमदो सताइश लानत में बदल जाएगी। ये जानते हुए भी उसने इस बोहरान को बदलने की कोई तदबीर ना की। पहली बात तो यह है कि उसने अपने हवारियों को कोई भी मादी उम्मीद ना दिलाई और ना किसी किस्म के दुनियावी अजर का वादा किया। एक शख्स जो उसके हल्कया शागर्दियत में आना चाहता था, उसे यीशु मसीह ने यूं फरमाया, लोमड़ियों के भट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। मत्ती 20:8।
अगर यीशु मादी मफाद का लालच देता तो हर कोई उसकी वफादारी का दम भर लेता, मगर उसे ऐसी खिदमत कबूल ना थी। इसमें भी कोई शक नहीं कि उसके पैरोकारों में बेशुमारे ऐसे लोग थे जो उसकी दुनियावी बादशाही में दिलचस्पी रखते थे। रोटियों के मोजज़ा में जो गहरा रूहानी सबक मुजमर था, वो उसे भी समझने से कासिर रहे। 5,000 को रोटी खिलाने के मोजज़ा की खबर जंगल की आग की तरह दूर और नज़दीक फैल गई, बल्कि अगली ही सुबह तमाम अतराफ से लोग बैते सय्यदा में यसु को देखने चले आए। ये बहुत बड़ा हुजूम खुश्की और तेरी का सफर करके यसु के दीदार को पहुंचे, और जो गुजरी रात उससे वदा होकर चले गए थे, वो भी वापस उसी जगह आए जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। वो 100 चीते थे कि वो अभी तक वहां ही होगा, क्योंकि वहां कोई कश्ती बाकी न रही थी जिस पर सवार हो वो दूसरे किनारे पहुंचता। मगर वो नाकाम और मायूस होकर कुफ्र नहूम में उसे ढूंढने को चले गए, क्योंकि एक दिन के तवक्कुफ के बाद वो गेंसर्त पहुंच गया। जूं ही उन्हें पता चला कि वो यहां आ पहुंचा है, तो लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाके में चारों तर दौड़े और बीमारों को चार पाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना कि वो है वहां लिए फिरे। मरकज 55:6। कुछ देर के बाद वो हैकल में गया और वहां जो बैते सय्यदा से आए थे उन्होंने उसे पा लिया, और उसके शागिर्दों से ये खबर भी सुनी कि यसु ने किस तरह समंदर पार किया। शागिर्दों ने उन लोगों को समंदरी तलातुम की कहानी भी सुनाई, और ये भी कि उनका चप्पू वगैरह चलाना कारगर साबित न हुआ। नीज उन्होंने यसु के पानी पर चलने के वाकया के बारे भी बताया, और फिर उन्हें पतरस का पानी पर चलने और डूबने की कहानी भी बताई। शागिर्दों ने यह भी बताया कि किस तरह यसु ने उसे बचा या और तलातुम को साकिन किया, जिससे भीड़ बड़ी हैरान हुई। बास को यह सब कुछ सुनकर यकीन ना आया, और वो खुद यसु के पास आकर पूछने लगे कि ए रब्बी, तो कब यहां आया, क्योंकि वो उसकी जबान मुबारक से उस मोजज़े के बारे मजीद सुनना चाहते थे। मगर यसु ने उन्हें उनकी तवक्को के खिलाफ ये जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। यूहन्ना 26:6। चूंकि वो मादी फायदा ढूंढते थे, इसलिए यसु ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, फानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यूहन्ना 26:6-27। जिस लम्हा सामईन की दिलचस्पी बेदार हुई, उन्होंने पूछना शुरू किया, हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यूहन्ना 28:6। निजात पाने के लिए वो कई मजहबी तकलीफ देह रसूम अदा करते रहे थे ताकि खुदा की खुशनूदी हासिल कर सकें, और वो बखुशी हर नई तालीम को सुनने और अपनाने के लिए बदलो जान तैयार थे ताकि नेकी कमा सकें। वो पूछ रहे थे कि हम क्या करें ताकि निजात पाएं, वो क्या कीमत है जो हमें आने वाली जिंदगी हासिल करने के लिए चुकाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान ला। यूहन्ना 29:6। यीशु मसीह को अपनाना ही निजात और बहश्त को हासिल करना है। खुदा के बर्रे में ईमान रखना जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, निजात और बहश्त की राह है। यूहन्ना 29:1। मगर लोगों ने इस इलाही सच्चाई को मानने का इंतखाब ना किया। यसु ने तो वही काम किया जो पेशनगोई में बताया गया था कि मसीह मऊत करेगा, मगर उन्होंने अपनी खुदी और लालच के जेरे साया ये खिदमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खुदावन मसीह ने एक दिन भेड़ को रोटी खिलाई थी, मगर मूसा ने बयाबान में बनी इसराइल को 40 साल तक आसमानी मन से सैर किया, और अब लोग मसीह मऊत से उससे भी कहीं ज्यादा की तवक्को करते थे। उनके गैर तसल्ली पजीव दिलों में ये सवाल पैदा होता था कि अगर यसु इतने मोजज़ात दिखा सकता है, क्या वो अपने तमाम लोगों को सेहत व कुव्वत और दौलत बहम नहीं पहुंचा सकता, और क्या वो अपने लोगों को उनके हाथ से छुड़ा नहीं सकता जो उन पर जुल्म ढाते हैं, क्या ये अपने लोगों को इज्जत और इख्तियार देने से कासिर है। वो सोचते थे कि जब ये दावे करता है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं और उसके बावजूद इसराइल का बादशाह बनने से इनकार करता है, तो उसमें भेद क्या है। बास सोचते थे कि जो कुछ उसने दावे कर रखा है उस पर उसे खुद यकीन नहीं, या अपने दावे के मुताबिक उसे अपने इलाही मिशन का सही फहमो फरासत नहीं। यूं उन्होंने तजब्जुब के लिए अपने दिल वाह कर दिए, और इबलीस ने जो बेयकीनी और गलतफहमी का बीज बोया था वो रंग लाया, जिसकी उन्होंने फसल काटी। अब करीब करीब मिजाहिया अंदाज में एक शरा के मौलिम ने पूछा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें। यूहन्ना 30:6। हमारे बाप दादा ने बयाबान में मन खाया, उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यहूदी जनाब मूसा की इस मन की वजह से बड़ी इज्जत करते थे कि उपस ने मन खिलाया, मगर वो उसको नजरअंदाज कर रहे थे जिसने उनके बाप दादा तो जनाब मूसा के खिलाफ बड़बड़ाते और शिकायत करते थे, और उन्हें उसके मिशन पर भी शक था। वो हरगिज ये तस्लीम नहीं करते थे कि ये मिशन खुदा की तरफ से है। वही रूह उन पर फिर गालिब हुई और उन्होंने यसु मसीह के पैगाम को रद्द कर दिया। यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। यूहन्ना 32:6। मन बरसाने वाला उनके दरमियान खड़ा था, ये यसु मसीह था जिसने उन इब्रानियों की बयाबान में रहनुमाई की। इसी ने उनको रोजाना आसमान से खाना खिलाया। वो मन हकीकी रोटी की अलामत था। हकीकी मन वही है जिससे जिंदगी बख्श रूह पैदा होती है। यसु मसीह ने फरमाया, खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यूहन्ना 33:6।
खुदावंद मसीह के सामईन अभी तक आरजी रोटी के बारे सोच रहे थे, बस वो यसु से कहने लगे, ए खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यूहन्ना 34:6। इस यसु ने खुले और सादा अल्फाज में उनको जता दिया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। ये अलामत जो खुदावंद मसीह ने इस्तेमाल की उससे यहूदी कौम पेशतर ही बाखबर थी, क्योंकि रूह ने जनाबे मूसा के जरिया पहले से उनको ये सिखा रखा था। इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इस्तिस्ना 3:8। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थीं। यर्मिया 16:15। शरा के मौलिमों में पेशतर ही ये जरबुल मसल मुरवज थी कि रोटी खाने से मुराद खुदा के कलाम का मुतालिया और भलाई के काम करना मकसूद है, और अक्सर ये कहा जाता था कि मसीह मऊत के आने पर तमाम बनी इसराइल को सैर किया जाएगा। नबियों की तालीम ने उस अमीक रूहानी सबक को जो रोटियां खिलाने के मौजज़ा में पाया जाता था बड़ा ही सादा और आसान बना दिया। खुदावंद यसु मसीह चाहता था कि इस सबक को उसके सामईन हैकल के अंदर सुने। अगर वो इल्हामी नुस्खों को जानते और समझते तो जब खुदावंद यसु मसीह ने यह फरमाया था उसे भी समझते कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। एक ने भूख से निढाल भेड़ को खुदावंद मसीह ने रोटी खिलाई थी, जिससे उन्होंने जिस्मानी ताकत और ताजगी पाई। उसी तरह वो यसु मसीह से रूहानी कुव्वत, ताजगी और अबदी जिंदगी पा सकते थे। खुदावंद मसीह ने फरमाया, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। उसने मजीद फरमाया, तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाए। रूहुल कुदस ने जो गवाही दी थी और खुदा का मुकाशफा जो उनकी रूहों में सरायत कर गया था, उसके जरिए उन्होंने यसु को देखा था। उसके जिंदा और ताबंदा सबूत वो आए रोज देखते थे,
इसके बावजूद वो एक और निशान तलब करते हैं। अगर यसू मसीह उनको एक और निशान दे देता तो वो फिर भी पहले की तरह कम एतकाद ही रहते। जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था, अगर वो उससे कायल ना हुए तो इस नस्ल को मजीद अजायब दिखाना अबस था। कम एतकादी शक को शुभात की कोई वजह ढूंढ ही लेती और मसबत और माकूल शवाहिद को भी ठुकरा देती है। इसके बावजूद हठ धर्म रूहों से मसीह ने इल्तमास की, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल न दूंगा। यूहन्ना 37:6।
यस्सु ने फरमाया, जो ईमान लाएगा वो अबदी जिंदगी पाएगा, एक रूह भी बर्बाद ना होगी। फरीसियों और सदूकियों को बहस करने की जरूरत नहीं कि आया कयामत में मुर्दे जी उठेंगे कि नहीं। यसु मसीह की यकीन दहानी के बाद किसी को ना उम्मीद होने और गम खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यूहन्ना 40:6। मगर कौम के रहनुमा बड़े बरहम हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा यसु नहीं, जिसके बाप और मां को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? यूहन्ना 42:6। हकीकत में वो यस्सु का ये कहकर मजाक उड़ा रहे थे कि ये शख्स तो गरीब से घराने से ताल्लुक रखता है। वो उसे गलीली मजदूर से ज्यादा वक्त ना देते थे और उसके खानदान को बहुत ही छोटा और मामूली ख्याल करते थे। उनका कहना था कि ये उन पढ़ बढ़ाई क्यों कर इतने बड़े दावे कर सकता है, हम उसकी बातों पर कान नहीं धर सकते, बल्कि वो तो उसे नाजायज औलाद कहने से भी गुरेज नहीं करते थे। मगर मसीह यस्सु ने अपनी पैदाइश के राज को कभी खोलने की जरूरत महसूस ना की, और जब उसके आसमान से उतरने के बारे में सवाल किए गए तो उसने उन्हें कोई जवाब ना दिया। और जब उससे पूछा गया कि बगैर कश्ती के तो क्यों कर दूसरे किनारे चला गया, तो भी उसने कोई जवाब ना दिया। ना ही उसने लोगों की तवज्जो उन मौजजात की तरफ दिलाई जो उसकी जिंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल थे। उसने दुनियावी जाहो चश्म की कोई परवाह ना की, बल्कि खादिम की सूरत अख्तियार की। उसके काम और कलाम दोनों उसकी सीरत और बसीरत के आईनादार थे। जिनके दिलो दिमाग को जाते इलाही ने रोशन कर रखा था, उन्होंने उसमें खुदा के बेटे को देखा और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के उकलूते का जलाल। यूहन्ना 14:1। सवालात से कहीं ज्यादा फरीसियों के दिल में यस्सु के खिलाफ तासुब था, क्योंकि खुदावन मसीह के हर अमल और कलाम से उनके दिलों में बोग्ज, नफरत और दुश्मनी पैदा होती। बदी वजह, यस्सु ने उनके किसी सवाल के जवाब देने की जरूरत महसूस ना की। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा उसे खींच न ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है, और तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे, और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। यसैया 13:54।
इस पर यहूदी बड़ा फख्र करते थे कि खुदावंद खुदा खुद उनका मुअल्लिम है, मगर खुदावंद मसीह ने उन पर वाज़े किया कि तुम्हारा ये दावे और गुमान बेमानी है। उसने कहा, जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। सिर्फ यसु मसीह के जरिए ही वो खुदा के बारे जान सकते थे। बनी नौ इंसान उसके जलाल को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। जिन्होंने खुदा के बारे जाता उन्होंने बेटे की मार्फत सुना, और यस्सु नासरी के जरिए ही वो उसको पहचान सकते थे, जिसने फितरत और मुकाशफा के जरिए बाप को आश्कारा किया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। यूहन्ना 47:6। प्यारे यूहन्ना की मार्फत रूहुल कुदुस कलीसिया को फरमाता है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है, और जिसके पास ने फरमाया, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यस्सु मसीह ने इंसानी जामा पहना ताकि हम उसके साथ एक हो सकें। इसी की बदौलत से हम कब्र से जिंदा हो सकेंगे, क्योंकि ईमान के जरिया उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी बन जाती है। वो जो यस्सु को अपने दिल में उतार लेते हैं
हमेशा की जिंदगी उन्हीं की है। रूह के जरिए खुदावंद हम में सुकूनत करता है और खुदावंद के रूह को हम सिर्फ ईमान के जरिए दिलों में बसाते हैं। जब ईमान से रूह हमारे दिलों में बसता है, उसी वक्त हमेशा की जिंदगी का आगाज हो जाता है। लोगों ने यस्सू को मन का हवाला दिया जिसको उनके बाप दादा ने बयाबान में खाया था। असल में वो ये कहना चाहते थे कि रोटियों का मोजज़ा तूने दिखाया है। मन का मोजज़ा इससे कहीं बढ़तर था, मगर यस्सू ने उन पर जाहिर किया कि जो बरकत वो देने आया है उसके मुकाबला में मन का मोजज़ा निहायत ही कमतर है। बयाबान में बरसाया गया मन दुनिया तक महदूद था, वो अबदी जिंदगी न दे सकता था, जबकि वो रोटी जो आसमान से उतरी है यानी यस्सू मसीह, वो अबदी जिंदगी देने पर कादिर है। यस्सू मसीह ने फरमाया, जिंदगी की रोटी में हूं, तुम्हारे बाप दादा ने बयाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यूहन्ना 49:6-51। ये वो वक्त था जब यहूदी यरूशलेम में मिस्र से बनी इसराइल की रिहाई की याद में ईद फसह मनाने को थे। जब कत्ल करने वाले फरिश्ता ने मिस्रियों के पहलोठे मार दिए, इस ईद के मौका मसीह खुदावन चाहता था फसह के बर्रे की बनाए लोग खुदा के हकीकी बर्रा को पहचाने जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। मगर यहूदी अलामत को ही अहमियत देने पर तुले हुए थे जबकि हकीकी बर्रा उनमें मौजूद था। उन्हें खुदावंद के बदन को पहचानने का बिल्कुल इम्तियाज न था।
शरा के मुअल्लिम गुस्से में आकर दरियाफ्त करने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। उनका कलाम कमोबेश निकुदिमस से मिलता जुलता था, जिसने यसू से पूछा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है। यूहन्ना 4:3। किसी हद तक वो यसू की बात समझ गए थे, मगर वो उसके कलाम को तस्लीम करने के लिए हरगिज राजी ना थे। वो उसके कलाम को मोड़ तोड़कर लोगों को उसके खिलाफ उभारना चाहते थे, मगर यसू किसी तरह भी उनसे खायफ ना हुआ, बल्कि से कहीं ज्यादा इख्तियार के साथ सदाकत को बयान किया। यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिलहकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिलहकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। यूहन्ना 56:53।
मसीह के गोश्त को खाने और उसके खून को पीने से मुराद उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना और ये ईमान रखना कि वो हमारे गुनाह माफ करता है। नीज हम उसमें कामिल होते हैं। उसकी मोहब्बत को देखने, उसमें कायम रहने, उसके खून को पीने और उसके गोश्त को खाने से हम उसकी फितरत का हिस्सा बन जाते हैं। बदन की नश्वोनुमा के लिए जो काम गिजा का है, रूह के लिए वही काम यसु मसीह का है। जब तक हम खाना नहीं खाते, वो हमें फायदा नहीं पहुंचा सकता, और जब तक वो हमारे जुज बदन नहीं बन जाता, ला हासिल है। इसी तरह अगर हम मसीह यस्सू को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, हमें कुछ भी फायदा नहीं। सिर्फ उसके बारे इल्म रखना काफी नहीं, हमें उसके गोत को खाना, उसे अपने दिल में उतारना है ताकि उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी बन सके। उसकी मोहब्बत और फजल हमारे अंदर जज्ब होना लाजिम है। यसू ने फरमाया, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। यूहन्ना 57:6। जैसे यसू मसीह ईमान के जरिया बाप में रहता है, इसी तरह हमें भी ईमान के वसीला यसू में जिंदा रहना है। खुदावन मसीह ने खुद को कुल्ली तौर पर खुदावन खुदा के ताबे कर रखा था, यहां तक कि खुदा की मर्जी यस्सू के वसीला पूरी होती थी। खा वो हमारी तरह आजमाया गया, फिर भी वो बेगुनाह रहा। हमें भी आजमाइशों पर उसी तरह गालिब आना है जैसे यस्सू मसीह आजमाइशों पर गालिब आया। क्या आप मसीह के पैरोकार हैं? अगर ऐसा है
तो रूहानी जिंदगी के बारे जो कुछ लिखा गया है वो आपके लिए है। से, आप यसु के साथ मुत्तहिद होने के जरिए हासिल कर सकते हैं। क्या आपका जोश और जज्बा जाता रहा है? क्या आपकी पहली मोहब्बत ठंडी पड़ गई है? यसु की मोहब्बत को कबूल कीजिए, उसके गोश्त को खाइए, उसके खून को पीजिए, तो आप खुदा और उसके बेटे के साथ एक हो जाएंगे। बेईमान यहूदियों को खून पीने के लहू मानों के अलावा कुछ नजर ना आया, क्योंकि रस्मी शरीयत में लिखा है कि तू खून ना खाना। इस पर वो आपस में तकरार करने लगे, हत्ता के उनके साथ कुछ शागिर्द भी मिलकर कहने लगे, ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? यूहन्ना 60:6।
मगर यसु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। यूहन्ना 61:6-64। यसु मसीह की जिंदगी उसके कलाम में है जो दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उसने अपने कलाम से बीमारों को शिफा बख्शी और बदरूहों को निकाला। अपने कलाम से ही मुतलातिम समंदर को साकिन कर दिया और मुर्दों को जिंदा किया। उसने वैसे ही खुदा का कलाम किया जैसे उसने अहदे अतीक के नबियों और असातजा के जरिए किया था। तमाम किताब मुकद्दस यसु मसीह का जहूर है, और वो चाहता था कि उसके तमाम पैरोकार उपस कलाम को सिद्ध के दिल से तस्लीम करें, ताकि जब वो उनसे जुदा हो जाए तो ये कलाम उनकी कुव्वत का मंबा हो। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मत्ती 4:4। हमराय जिस्मानी जिंदगी गिजा की बदौलत ही कायम व दायम रहती है। इसी तरह हमारी रूहानी जिंदगी कलाम ही की बदौलत जिंदा व जावेद रहती है। हर रूह को बजाते खुद खुदा के कलाम से जिंदगी पाना है। जैसे कुव्वत हासिल करने के लिए हमें गिजा की जरूरत है, इसी तरह रूहानी जिंदगी की कुव्वत के लिए हमें कलाम खुदा से कुव्वत पाना है। दूसरों के जरिए से हमें यह कुव्वत नसीब नहीं हो सकती। हमें कलाम मुकद्दस का मुताला रूहुल कुदस की मदद से करना है, ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ सकें। हमें एक आयत को लेकर उस पर अच्छी तरह गौर खौज करना है और देखना है कि इस आयत के जरिए खुदामंद खुदा हमें क्या हिदायत या तंबीह करना चाहता है। ईमान की आंख से यसु को मुसलसल तकते रहने से हमें कुव्वत नसीब होती है। खुदावंद अपने बच्चों पर जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं अपने बहुत ही कीमती मुकाशिफात को खोलेगा, ताकि वो मसीह को अपना जाती नजात दहिंदा के तौर पालें। जब वो उसके कलाम को पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि ये जिंदगी है। उसका कलाम दुनियावी और जिस्मानी नीयत को दूर करके मसीह में नई जिंदगी बख्शता है। रूहुल कुदस बतौर मददगार के वारिद होती है। खुदा के फजल से मसीह यस्सु के शागिर्द के अंदर खुदा की शबी बहाल होती है, चुनाचे वो नया इंसान बन जाता है। नफरत की जगह मोहब्बत ले लेती है और इंसान का दिल खुदा की शबी पा लेता है। यही इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से सादिर होती है। खुदावन यसु मसीह ने अपने और अपने शागिर्दों के ताल्लुक को एक मुकद्दस और अबदी सदाकत बताया। वो जो उसके हवारी होने का दावे करते हैं वो उनकी बसीरत और सीरत को जानता है, और उसका कलाम उनके ईमान की जांच है। उसने फरमाया कि वो मेरे कलाम को जानेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। वो जो उसे मानते हैं वो उसकी सीरत को अपनाते और उसमें ढलते चले जाते हैं, मगर उसके लिए उन्हें दिल के हलीम और फरोतन और यस्सू के ताबे होना लाजिम है। उन्हें तंग रास्ता पर चलना होगा ताकि यस्सू की जिंदगी के वारिस हो सकें। शागिर्दों का इम्तहान निहायत कड़ा था। जिन लोगों ने यस्सु को जबरदस्ती बादशाह बनाने की कोशिश की उनका जोशो खरोश पड़ चुका था, और जो कलाम यस्सु ने हैकल में किया उससे उनकी आंखें खुल गईं। अब उनको हकीकत मालूम हो गई। उसके कलाम से उन पर वाजे हो गया कि उन्हें इससे कोई मादी फायदा नहीं पहुंच सकता। बेशक उन्होंने इसके मौजजात को खुशामदेद कहा था,
वो राजी थे कि उसने उनके मरीजों को शिफा बख्शी है, मगर वो उसकी खुद इनकारी और जानसारी की जिंदगी से बिल्कुल खुश न थे। उन्हें इस रूहानी हैरान कुन बादशाही की कोई परवाह नहीं थी। गैर मुखलिस खुदगर्जी लोग जो पहले उसको बहुत चाहते थे मुतनफ़िर हो गए। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, यानी रोमी हकूमत से गुलू खलासी। वो ऐलानिया कहते थे कि अगर यसु उन्हें रोमी हकूमत की गुलामी से रहाई नहीं बख्शता तो हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं। मगर यसु मसीह ने उन्हें बड़ी सफाई से बयान किया कि तुम में ऐसे भी हैं जो ईमान नहीं लाते। मजीद फरमाया, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। वो उन्हें बताना चाहता था कि अगर वो उसकी तरफ नहीं खींचे गए तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने दिल रूहुल कुदुस के लिए नहीं खोले। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उसे समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। अकर मैथ्यू 14:2।
ईमान से ही हम मसीह के जलाल को देखते हैं। ये जलाल पोशीदा है और रूह कुदस के जरिया ईमान ही से इंसान की रूह में जलवागर होता है। जब यीशु ने शागिर्दों को उनकी कम एतकादी के सबब अवाम में झड़का तो बाज उससे मजीद दूर चले गए। वो सख्त नाराज होकर और यीशु से मुंह मोड़कर फरीसियों के इरादों की तकमील में सरगर्म अमल हो गए और यीशु को नुकसान पहुंचाना चाहा। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया। उन्होंने बदन को रूह पर और भूसी को अनाज पर तरजीह दी। चुनाचे उन्होंने मसीह यीशु को हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया। इसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खुलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तोकते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझनेगा नहीं। गेहूं को खुत्ते में जमा करने का ये एक वक्त था। सच्चाई के कलाम से गेहूं भूसी से अलहदा हो गया, क्योंकि वो अनाज के मुकाबला में नहायत ही हल्की थी। वो अन्नी ही रास्तबाजी पर तकिया करने वाले लोग थे। दुनिया उनकी थी और वो दुनिया के थे, इसीलिए वो यीशु से दूर चले गए। आज भी बहुत से लोग वैसा ही फैसला कर रहे हैं। आज भी रूहों का इसी तरह इम्तिहान हो रहा है जैसे शागिर्दों का कुफ्र नहूम की हैकल में हुआ था। जब सच्चाई उन तक पहुंचती है तो वो मालूम करते हैं कि उनकी जिंदगियां खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं हैं। वो सदाकत की रोशनी में देखते हैं कि उन्हें मुकम्मल तब्दीली की जरूरत है, मगर वो खुद इनकारी की खिदमत अपनाना नहीं चाहते। चुनाचे वो उन गुनाहों को दरियाफ्त करके जो उनकी जिंदगियों में पाए जाते हैं सख्त नाराज होकर चले जाते हैं। वो यस्सू के शागिर्दों की तरह ये कहते हुए इससे मुंह मोड़ लेते हैं, ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। ये लोग खुशामद सुनना तो बहुत पसंद करते थे, मगर सदाकत को सुनने के लिए तैयार न थे। जब उन लोगों ने रोटियां खाएं तो यस्सू की तारीफ में उनकी आवाजें सबसे बुलंद थीं, लेकिन जब रूहुल कुदुस ने उनके गुनाहों को उन पर वाज़ेह किया और उन्हें तर्क करने की हिदायत फरमाई तो उन्होंने यस्सू से मुंह मोड़ लिया। जैसे ही कुछ लोग यस्सू से दूर हुए उन पर एक दूसरी रूह ने कब्जा कर लिया। यस्सू में अब उन्हें कोई दिलचस्पी न रही जिसको वो पहले बहुत ही सराहते थे। वो यस्सू के दुश्मनों से जा मिले क्योंकि उनके काम ऐन उनके कामों के मुताबिक थे। अब उन्होंने यस्सू के कलाम की गलत तफसीर करके लोगों को अकसाना चाहा और यस्सू के खिलाफ जो कुछ कर सकते थे किया, हत्ता कि उनकी गलत बयानबाजियों के सबब यस्सू की जान खतरे में पड़ गई। यूं ये खबर आनन फानन जंगल की आग की तरह हर जा दूरों नजदीक फैल गई कि यस्सू नासरी ने खुद इकरार किया है कि वो मसीह मऊद नहीं। तो जैसे एक साल बेशतर यहूदिया में लोग यस्सू के खिलाफ हो गए थे, इसी तरह तमाम गलील में लोग यस्सू नासरी के खिलाफ हो गए थे। इसी तरह तमाम गलील में लोग यस्सू नासरी के खिलाफ हो गए। बनी इसराइल पर अफसोस कि उन्होंने अपने निजात दहिंदा को इसलिए रद्द कर दिया कि वो एक ऐसे फातेह की तमन्ना करते थे जो उन्हें आर्जी हुकूमत व इख्तियार अता करे। वो उस गजा के मुतमन्नी थे जो आर्जी है ना कि अबदी। गो उन बेईमान शागिर्दों के चले जाने का मसीह यस्सू को दिली सदमा हुआ, मगर उसने उन्हें रोकने की जरा भर जरूरत महसूस ना की, क्योंकि ये उनका अपना चुनाव था। अजाबाद यस्सू बाकी 12 शागिर्दों से मुखातिब होकर ये पूछने लगा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? यूहन्ना 67:6। शमून पत्रस ने जवाब दिया,
اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یوحنا 8:76۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ اسرائیلی معلم تو روایتوں اور مذہبی رسوم کے غلام تھے، فریسی اور صدوقی مسلسل تکرار کا شکار رہتے تھے۔ یسوع کو چھوڑنے کا مطلب ایسے لوگوں میں جانا تھا جو رسم و رواج، روایات اور حکایات پر جیتے اور دنیاوی جاہ و چشم پر جان دیتے تھے۔ شاگردوں نے یسوع مسیح کو قبول کر کے ابدی اطمینان پا لیا تھا، وہ کیسے ان لوگوں کے پاس واپس جا سکتے تھے جو گنہگاروں کے دوست کو لان تان کرتے اور اذیت پہنچاتے تھے؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم یسوع مسیح کی تعلیم، اس کی رحمت اور محبت کے اسباق کو چھوڑ کر بدکار، تاریک اور بے ایمان دنیا کا رخ کریں؟ جب بہتیروں نے یسوع کو باوجود معجزات دیکھنے کے چھوڑ دیا، اس وقت شمون پطرس نے شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے شاگردوں کے یومان کا یوں اظہار کیا، خداون کا قدوس تو ہی ہے۔ خداون یسوع مسیح نے سچائی کا کلام پیش کیا، جس کی وجہ سے اس کے اپنے بہت سے شاگرد واپس لوٹ گئے۔ اس کا علم مسیح یسوع کو پیشتر ہی تھا، اسے پہلے سے معلوم تھا کہ آزمائش کی گھڑی میں اس کے ہر ایک شاگرد کا کڑا امتحان ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ گتسمنی اور صلیب کی اذیت ان کے لیے صبر آزما گھڑی ہوگی۔ اگر ان کی پہلے آزمائش نہ کی جاتی تو آخری دم تک اس کے شاگردوں میں بہت سے کم اعتقاد اور خود غرض لوگوں کی موجودگی قائم رہتی، اور یہ ممکن تھا کہ جب مستقبل میں یوں مسیح کی عدالت میں پیشی ہوتی اور بھیڑ اسے تاج پہنا کر اس کا ٹھٹھا اڑاتی تھی، بار بار پکارتی کہ اسے صلیب دو، اے صلیب دو، تو ایسے لوگ جن کی خواہشوں کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، ایسے وقت میں یسوع کا انکار کر کے بھیڑ کے ساتھ مل جاتے اور یوں شاگردوں کا دل توڑ دیتے۔ اس تاریک وقت میں یہ بھی ممکن تھا کہ جھوٹے شاگردوں کے نمونے کو اپناتے ہوئے کئی اور ان کے ساتھ مل جاتے۔ اس لیے ان جھوٹے شاگردوں کا اس وقت یسوع کے حلقہ میں سے نکل جانا وفادار شاگردوں کے حق میں بہتر رہا۔ علاوازیں، جب بے وفا شاگرد چلے گئے تو یسوع نے اپنی موجودگی سے وفادار شاگردوں کے ایمان کو تقویت پہنچائی اور انہیں آخری امتحان کے لیے تیار کیا۔